المسلمون. صدق الله العظيم. يقول ما نزل عن الصدق سامعين حضرات والخواتيم. یہاں اس سے پہلے بھی حاضری کا موقع ملا ہے اور اس منزل میں بھی آنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، لیکن کچھ کہنے اور سننے کا موقع پہلی موقع مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی صحیح رہنمائی فرمائے، صحیح بات کہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میں صحیح بات کہنا بھی آج کل مشکل ہو گیا دو وجہوں سے، ایک اپنی وجہ سے اور ایک غیروں کی وجہ سے. اپنی وجہ سے تو اس لیے کہ ہماری اصلاح نہیں ہوئی ہے، اس لیے صحیح بات نہیں کہہ پاتے، اور دوسروں کی وجہ سے اس لیے کہ دوسرے دباؤ ڈالتے ہیں اپنی محبت کا، عقیدت کا، اور کچھ اور چیزوں کا بھی، جس سے آگے صحیح بات نہیں کہتا. حالانکہ ہم سب کو صحیح بات کہنی چاہیے، اور جو تقریر اور تحریر ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ صحیح بات کہی جائے. بس یہ ہے کہ اچھی بات کہی جائے، انداز سے کہی جائے، یعنی صحیح بات کہی جائے، صحیح طریقے سے کہی جائے. بعض دفعہ صحیح بات کہی جاتی ہے، غلط طریقے سے کہی جاتی ہے، تو اس میں بھی معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ ہوتی بات غلط ہے لیکن انداز اچھا ہوتا ہے، دونوں باتیں غلط ہیں. بات بھی صحیح ہو، صحیح بھی صحیح طریقے سے کہی بھی جائے، اور اس میں غیروں کی نقالی نہ کی جائے. پولس نے لکھا ہے کہ پرچار مذہب مسیحی کے لیے اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو آپ لوگوں کو اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے، اس لیے کہ جھوٹ اچھے کام کے لیے بولا جا رہا ہے. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، غلط کر تو ہو سکتا ہے، مسیحی طریقہ تو ہو سکتا ہے، اسلامی نہیں ہے، محمدی نہیں ہے، صحابیوں صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، تابعین کا اولیاء کا طریقہ نہیں ہے. یہاں تو سچ ہی سچ ہے، جھوٹ کا کچھ بھی گزر نہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے. اس وجہ سے ہم لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے اور صحیح بات کہنی چاہیے. انبیاء اکرام علیہ الصلوات و تسلیمات جو سب سے زیادہ معاشرے کا اور سماج کا مقابلہ کرتے ہیں وہ اپنی صحیح بات کہتے ہیں، اور جب صحیح بات کہتے ہیں تو دشمنی بول دیتے ہیں، لیکن اپنی صحیح بات کو بات نہیں آتے، بات نہیں کہتے. تین چیزیں ابھی بھی ہم جائے کرام کے ساتھ آپ کو ملیں گی. ایک تو دعوت الی التوحید سب سے پہلا مرحلہ ہے، پھر جو بیماری جس قوم اور سماج میں ہے اس کی نشاندہی، اس کا علاج، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس پر اجرت کا طلب نہ کرنا، امانت، دیانت اور خیر خواہی کا حق ادا کرنا. یہ ہم جائے کرام کے خاص آپ باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اگر قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ باتیں آپ کو ہر نبی کے ساتھ مل جائیں گی. تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم سب کو صحیح بات کہنے کی بھی اللہ توفیق دے اور صحیح کانوں سے سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس لیے اگر ہمارے کان شنوا نہیں ہے تو دل تک بات پہنچے گی نہیں، اور بات اگر صحیح کہی نہیں جا رہی ہے دل پر اثر نہیں ڈالے گی. دونوں باتیں صحیح ہونی چاہیے. کسی بھی عرض کیا کرتا ہوں تو دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہاتھ ہوا میں چلائیں اور تالی بج جائے، آواز آ جائے. جب ادھر سے ہاتھ اٹھے گا ادھر سے ہی ہاتھ آئے گا تب تالی بج جائے گی. اور تالی بج جانے کے بعد میں نے تو ایک جگہ غیر مسلم بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے وہاں کہا کہ یہ ہمارے غیر مسلم اتنی بڑی تعداد میں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اگر وہاں بیٹھ کر کہیں کہ آپ بہت اچھے، یا کہیں کہ میں کہوں کہ آپ بہت اچھے، یا اس کے برخلاف آپ بہت برے، وہ کہیں آپ بہت برے، یا آپ ایسے اور ہم کہیں ہم ایسے، تو اس سے تو کام نہیں چلے گا. کچھ آپ آگے بڑھیں، کچھ میں آگے بڑھوں اور ہاتھ ملائیں تو معلوم ہو جائے گا کس کا ہاتھ گرم ہے کس کا ٹھنڈا. लेकिन अगर दूर दूर बैठ के ऐसा कहते रहे तो उससे हर काम होने वाला नहीं, मसला हल होने वाला नहीं। तो उन सबको ये बात पसंद भी आई और है भी हकीकत वाली बात। तो बात ये है, और प्याम इंसानियत का जो भी तारुफ कराया है उनमें से अगर अमली तौर पर मैं करूँ तो प्याम इंसानियत मुसाफा करने का नाम है। अगर हम मुसाफा कर लें तो जाहिर है क्या फिर और मसले आगे बढ़ते हैं। हदीस में जो तरकीब आई है आप ये देखें तो उसमें पहले है सलाम, फिर है कलाम, फिर है तमाम, ये तरकीब करता है। पहले कीजिए सलाम अलैकुम, दिल की खिड़की खुल गई, अब करीब आ गए, अब बात कीजिए, बात अच्छी कीजिए, अकाबल कलाम यानी अच्छी बात, पाकीदा कलाम, पाकीदा यानी हर बुराई से पाक, हर झूठ से पाक। इसलिए जो पाकीदा कलाम अपनी जबान से अदा करता है उसको शीश महल मिलते हैं, यानी ऐसे बाला खाने के शीशों में बने हुए हैं जन्नत में उगे रहेंगे। तो पहले जब आपने कलाम अच्छा किया तो जाहिर है कि खिड़की के अंदर खुल गई और दरवाजा खुल गया, आप दाखिल हो गए। दाखिल हो गए तो जाहिर है कि बाहर खाए पिए बाहर नहीं आता है तो खाना खिलाएंगे, इसीलिए उनकी सिफत आई है खाना खिलाते हैं। जो मुसलमान है उसके औसाफ में आया है इतआमुत्तआम, यानी जो अच्छे मुसलमान हैं वही काम करते हैं। तो इसी तरतीब से आदमी आगे बढ़ता है, और फिर जब आगे बढ़ता है तो फिर क्या होता है, कहता है कि ये हमको परेशानी है, तो घर में चला जाता है तो कहता है इसकी ये परेशानी है, तो मैं कहता हूँ या कोई दूसरा जो उसके घर में दाखिल हुआ है कहता है मैं इसको दूर कर सकता हूँ। ऐसे ही इस वक्त हाल है, वो अपनी जगह नाराज बैठे हैं, आप अपनी जगह नाराज बैठे हैं, वो है परेशान। अगर आप पहले सलाम करें, फिर उसके बाद सलाम करें, फिर काम का इंतजाम करें, फिर उनके मसाइल का हल, अब मसाइल का हल करेंगे तो एकदम साया पलट जाएगी, जो आपका दुश्मन था वो आपका दोस्त हो जाएगा। कुरान जी फरमाया गया है कान्नहु वलियुल हमीम वमा युलक्काहा इल्ला लदीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला दू हज़्ज़िन अज़ीम। मगर ये किसको मिलती है बात, जो सब्र वाले हैं, और हम लोग बेसब्र बेसब्रे हैं। यहाँ काफ़िया मिलता उनको है जो सब्र वाले हैं, इसलिए कि हमारे हजरत मौलाना फरमाया करते थे दावत का काम करने में एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसको समझाना है या अपने सामने वालों को जक देनी है, दोनों में अलग अलग मसले हैं। आप उसको समझाना चाहते हैं या चुप करना चाहते हैं, चुप करना हो तो आप बहुत तेज बोलिए, मोटी मोटी दलीलें दीजिए, खामोश कर दीजिए, और अगर समझाना चाहते हैं तो पहले अपने दिल को पत्थर रख लीजिए फिर उससे बात कीजिए। हमारे हजरत साहब फरमाया करते थे कि हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे, एक साहब आए और कह रहे हजरत फला साहब को मैंने ऐसा जवाब दिया दांत खट्टे कर दिए, गंदा शिकन जवाब दिया। तो हजरत तो खामोशी से बोलते थे, हजरत ने फरमाया बेचारा गन्ना कैसे खाएगा, आपने तो दांत ही तोड़ दिए। और फिर मैंने उसको तकलीफ में एक जगह याद किया तो मैंने कहा दांत तो पहले ही टूटे हुए हैं इसीलिए तो हजम नहीं हो रहा है खाना, दांत लगा दीजिए ताकि हाजमा दुरुस्त हो जाए। इस वक्त हमको जरूरत ये नहीं है दांत तोड़ दे, दांत लगाने की जरूरत है, लेकिन हर सौ समय से इस वक्त तोड़ने को लगा हुआ है, हालांकि जोड़ने की जरूरत है। हमारे मौलाना रूम ने तो हजरत मूसा का किस्सा जिक्र किया है और उसने अपने खादमदार से बात कही, तू बराए फसल करदा नाम दी, इन्हें बराए फसल करदा नाम दी। अब यहाँ जोड़ने के लिए आओ, तुम तोड़ने कब से लगे, हमारा काम तो जोड़ने का था लेकिन हमने मामला बिल्कुल उल्टा कर दिया। रसूल पाक अली सलातो सलाम जोड़ने के लिए आए, हम ये जोड़ने के लिए आते, तोड़ने के लिए नहीं आते। जाहिर में लोग समझते हैं कि तोड़ा जा रहा है, अहले मक्का ने रसूल पाक अली सलातो सलाम के खिलाफ जो बातें कही उसमें ये भी है बीवी शोहर को बाप बेटों को अलग कर देते हैं, लेकिन वो असलन अलग नहीं करते हैं, अलग असलन आप जोड़ते थे। अगर अलग न किया जाए तो जोड़ा कैसे जाए, अगर गलत जुड़ गया हो तो पहले उसको अलग करते हैं फिर जोड़ते हैं, अगर गलत जोड़ा हुआ है और उसको उसी में खटपिट करेंगे तो टूट जाए, लेकिन उसको अलग कर दीजिए फिर जुड़ जाएगा, और अगर आपने उसी में मेहनत उल्टी शुरू कर दी तो टूट जाएगा। इन तमाम बातों पर गौर करना पड़ेगा तब जाके हम काम कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों जरूरत इस बात की है कि ये इस वक्त हालात है, इसमें चंद बातें मैं अर्ज किए देता हूँ, अपने लिए भी हैं वो आपके लिए भी हैं। सबक सुनाता रहता हूँ तो आपको भी सबक सुना रहा हूँ, और बड़ों से जब आदमी सबक सुनता है तो छोड़कर दूसरों को पहुंचाता भी है और सबक इसीलिए पढ़ाया भी जाता है कि दूसरों तक पहुंचाए। सब पहले तो अम्बिया कराम ने सबक पढ़ाया और अम्बिया को अल्लाह ने पढ़ाया, अल्लाह ताला ने अम्बिया को सबक पढ़ाया, वो बराहराम अल्लाह के शामिल होते हैं। हमारे हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बारे में हमारे लखनऊ के एक शायर ने अजीब शेर कहा, तो पहला मिसरा कोई पढ़े तो परेशान हो जाए लेकिन दूसरा जब पढ़ेगा तो ठीक हो जाएगा। उसने पहले मिसरे में ये कहा, पढ़े न लिखे हजरते वाला, ये कोई कहेगा पढ़े न लिखे हजरते वाला शागिर्द रशीद खुदावंद का आला। तो अब जाहिर है कि हजरत का जो मकाम है बराह रास्त ऊपर से वही आ रही है और बराह रास्त आपको ऊपर से पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए आपने फरमाया अदबनी रब्बी फअहसन तअदीबी, खूब उन्होंने सिखाया और उन्होंने सिखाया और खूब सिखाया, पढ़ाया और खूब पढ़ाया। जाहिर है पढ़ाने वाला भी खूब है और जिसको सिखा रहा है बनाया उसको खूब है, तो खूब पढ़ाया भी मालूम भी खूब है और जिसको पढ़ाया जा रहा है वो भी खूब है, तो खूब दर खूब क्या कहने। तो अंबिया कराम को अल्लाह पढ़ाता है और फिर अंबिया कराम अपने बाद उलमा को पढ़ाते हैं, उलमा को पढ़ाते हैं, इसीलिए फरमाया अलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो है वो अंबिया के वारिस हैं, यानी उलमा ही उसे पढ़ते हैं। उलमा का मतलब क्या है, जो भी उसे पढ़े वो आलिम बन जाए, यानी वो तो आलिम आमोद होते आलिम दर होते हैं, आलिमों को आदमियों को आलिम बनाते हैं, इसीलिए हर सहाबी आलिम है। जो रसूल पाक अली सलातो सलाम के दरबार में हाजिर हो गया और आपकी सोहबत में एक लम्हा बैठ गया तो ईमान के उस दर्जे पर पहुंच गया जो बड़े बड़े मुजाहिदों और रियासतों के बाद औलिया अल्लाह भी नहीं पहुंच पाए, सिर्फ आपकी नजर कीमी आकर पड़ी इस पर और कहां से कहां पहुंच गया, उनके नजर में जब ये तारीफ थी उनकी तारीफ में तारीफ का आलम क्या होगा। इसीलिए हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला सबसे ऊंचे गए और आप तहकीक के मकाम पर फायल हुए कि उस पर पूरा एक मौजू है कि अबू बकर को ये मकाम कैसे मिला। जाहिर है रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उनको सब कुछ सिखाया, सब कुछ पढ़ाया, सब कुछ बनाया और अपने साथ उनको उठना और बैठना सिखाया, जहाँ तक कि अबू बकर इतने बुलंद हो गए कि उनके बराबर कोई पहुँच नहीं सका। तो इसमें भी बहुत सी बातें, पहली बात तो यहाँ पर मैं यही अर्ज करना चाहूँगा कि इस वक्त हमारा यमन जो है ये गहवारे शिर्क है, यहाँ जितना शिर्क है दुनिया में शायद कहीं और इतना शिर्क हो, शिर्क यहाँ बरस रहा है, उबल रहा है, आंधियाँ शिर्क की चल रही हैं और हम लोग बिल्कुल शिर्क से बेफिक्र बैठे हुए हैं इस मैदान से और ये समझते हैं कि तौहीद हमारे घर की रोटी है, तो ये घर से निकल के कहाँ जाएगी। लेकिन इस वक्त तौहीद अच्छे अच्छों की दांव पर लग गई, बड़े बड़े उलमा भी इसके जद में आ रहे हैं, इसलिए रिहर्सल ज़रूरी होती है, हर चीज़ की रिहर्सल ज़रूरी होती है, इसकी भी रिहर्सल होनी चाहिए और इसमें किसी का इम्तियाज नहीं, हर इंसान को करनी चाहिए, चाहे वो आर्य हो या जाहिर हो, चाहे अंग्रेजी लाइन का हो चाहे अरबी लाइन का हो, चाहे किसी दर्जे में हो, उसको इसकी रिहर्सल ज़रूरी करनी चाहिए, क्योंकि बुनियाद है, बगैर इसकी हैसियत नहीं है। जैसे बैंक में खाता खुलवाने वाले की, कि अगर बैंक में आप खाता नहीं खुलवाएंगे तो आपका पैसा जमा नहीं होगा और खाता खुलवा लेंगे तो जमा होगा। आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आप जाएं स्टेट बैंक में कहेंगे 1 करोड़ लाया हूँ जमा कर लूँ, तो बड़े से बड़ा मैनेजर जमा नहीं करेगा, क्या कहेगा पहले खाता खुलवाइए और आपका वो यानी रिस्पेक्ट करेगा, इज्जत करेगा और कहेगा अरे बताता हूँ मैं कैसे खाता खुले और जल्दी और मदद करेगा, आपके घर जाएगा, खुशामद करेगा, 1 करोड़ का मसला है। तो लेकिन ये नहीं कर सकता बगैर खाता खोल जमा कर, बड़े से बड़ा आदमी नहीं कर सकता, पैसे ही की समझ लीजिए, अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है तो बड़े से बड़ा आदमी कहीं काम नहीं बना पाएगा, कुछ नहीं कर सकता, क्या कितने खुशामद करे, जमा नहीं होगा कुछ भी। तो पहले अकीदा दुरुस्त होना चाहिए और इसीलिए अम्बिया कराम दावत सबसे पहले उनका काम होता है कि लोगों को तौहीद के लिए बुलाते हैं, अकीदा दुरुस्त करते हैं, तो ऐसे में हर शख्स की जिम्मेदारी है कि अपने अकीदे को दुरुस्त कर ले, उसको ठीक कर ले, और इस सिलसिले में उलमा से पूछना भी चाहिए और उलमा को कुरान हदीस से पूछना चाहिए, यानी उलमा भी धोखे में ना रहे कि हम पढ़े लिखे आदमी हैं इसलिए हम सब कुछ जानते हैं, बार दफ़ा उलमा का भी अकीदा नाव में लग जाता है। हमारे हजरत मां के वालिदैन ने एक मरतबा हजरत मां को खत लिखा और कहा अली अपने अकीदे की फिक्र करो, इस वक्त अच्छे अच्छे उलमा का अकीदा सही नहीं, अंदाजा लगाई उस वक्त लिखा था उनकी वालिदा ने, बात सही लिखी थी, इसलिए मैं साफ कह रहा हूँ।